Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज तक हम ये मानते आए कि सुख और शांति धन में है, रिलेशनशिप्स में है, किसी भी चीज में, सक्सेस में है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। आज तक हम ये मानते आए कि अगर हमारे पास सब कुछ है तभी हम खुश रह पाएंगे, लेकिन रियलिटी तो ये है कि अगर आपके मन शांत है तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके उषा बहन जी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति,
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू
दीदी, वी आर सो हैप्पी आज आप हमारे साथ हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए। दीदी, आज हम बात करना चाहते हैं जिंदगी के उस पहलू के बारे में जिसे हम आज तक नजरअंदाज करते आए कि शांति ये सबसे बड़ा धन है। किस तरह से शांति को अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना ले कि वो हमसे कभी अलग ही ना हो।
ऐसा है कि शांति वास्तव में देखा जाए तो हमारी वास्तविकता है, हमारा ओरिजिनल नेचर है, लेकिन उस नेचर को रियलाइज करना और उसमें स्थित होना। आज अगर मैं आप सबको कहूं कि जब भी आप कोई प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में चले जाते हैं जहां इतनी शांति है, कोई आवाज नहीं सिवाय चिड़ियाओं के चहकाने का, और एकदम वातावरण शांत है, कितना रिलैक्सिंग लगता है। अगर बाह्य प्रकृति की शांति को देखते हुए इतना सुकून मिलता है तो क्यों मिलता है? क्योंकि मेरी अंदर की प्रकृति भी वही है। इसीलिए वो अट्रैक्ट होती है। कहां कहां अट्रैक्शन होता है हमारा? या तो कोई सुंदर चीज देखी तब अट्रैक्शन होता है, या कोई एकदम पवित्र एटमॉस्फेयर में चले जाओ तब अट्रैक्शन होता है, या शांति के वातावरण में चले जाओ तब अट्रैक्शन होता है। क्योंकि ये बाह्य प्रकृति के जो गुण है वो इसीलिए हमें खींचते हैं क्योंकि वास्तव में मेरी अंदर की प्रकृति वही है
जी।
तो जिस तरह एक मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है, तो मेरी अंदर की प्रकृति भले आज व्यक्ति उसको रियलाइज करे या न करे, लेकिन जब उस स्थान पर चला जाता है तो अंदर से निकलता है, वाह कितना सुंदर है, कितनी शांति है, कितना रिफ्रेशिंग है
जी,
कितना रिलैक्सिंग है। ये शब्द अपने आप निकलता है। मतलब प्राकृतिक शांति जो है उसमें रिफ्रेशिंग होते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं और उसमें सुकून का अनुभव करते हैं
जी।
अगर वही प्रकृति हमारे भीतर की हम जागृत करें, जो हमारा ओरिजिनल नेचर है शांति का, उसको जागृत करें, तो शायद भीतर से भी हमें इतना ही रिफ्रेशिंग, रिलैक्सिंग और इतना ही सुकून का अनुभव हो सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि अगर हम ऐसे कोई शांति के वातावरण में चले जाते हैं तो भले कितने भी थॉट्स चल रहे होंगे, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं और हमारा जो ऑरा है वो भी और भी ज़्यादा काम हो जाता है। दीदी, पर ऐसा क्यों होता है कि बाहर की जो सिचुएशंस है वो हमें इतनी ज्यादा ओवर पावर कर देती है कि हम अपने नेचुरल स्टेट को भूल जाते हैं?
उसका कारण यही है कि हम अपनी वास्तविकता को ही भूल गए हैं। तभी तो कहावत है कि नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ, अपने आप को जानो और उसको महसूस करो, उस नेचर को महसूस करो, उसको बाहर ले आओ
जी।
अगर वो नेचर हमारा बाहर आ जाए, व्यवहार में, संबंध में, अनेकों के साथ, है ना, कर्म में, जब ये नेचर हमारा कार्य करने लगे, तो सारा दिन काम करने के बाद भी व्यक्ति शाम तक भी उतना ही फ्रेश रहेगा।
बिल्कुल दीदी। दीदी, रिफ्रेश होना, जैसे एक पॉइंट अगर हम लें, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आज ह्यूमन बीइंग को चेंज की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी देर पे वो या तो उस वातावरण से बोर हो जाते हैं या तो थक जाते हैं। अंदर में एक चेंज आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बनता जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है कि चेंज, इस चेंज को से बचने के लिए हम अपने आप को कैसे जागरूक रखें?
मतलब बाह्य चेंजेस तो आती है, चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस,
करेक्ट,
एंड चेंज इज कंटिन्यूअस, वो हर वक्त। परिवर्तन कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। लेकिन बाह्य परिवर्तन के साथ साथ अगर हम भीतर का भी परिवर्तन ले आए, भीतर का परिवर्तन का मतलब है कि अगर बाहर की सिचुएशंस में अशांति है, चैलेंजिंग चैलेंजेस है, उन चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए मुझे जो भीतर का परिवर्तन लाना है, धैर्यता। अगर उस परिवर्तन के समय मैं अपना नेगेटिव परिवर्तन करके अधीर्य हो जाती हूं, तो अधीर्यपने में जो डिसीशंस मुझे लेने होते हैं उस चुनौतियों के समय, शायद गलत हो जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर परिवर्तन पॉजिटिव है, माना बाहर का परिवर्तन जितना नेगेटिव हो, चैलेंजिंग हो, उतना ही अगर भीतर का परिवर्तन पॉजिटिव हो और वो पॉजिटिव क्वालिटीज से मैं उसको एड्रेस करती हूं, तो शायद हर परिवर्तन में भी मैं मेरी स्टेट ऑफ माइंड जो है बैलेंस्ड रखूंगी और हर परिवर्तन के बीच में भी मैं अपने आप को उतना ही एनर्जेटिक पाऊंगी। माना मेरी एफिशिएंसी, इंटरनल एफिशिएंसी, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता, वो कार्य करने लगेगी और उससे मुझे एक खुशी प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा।
दीदी, ये तो मैं समझ रही हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि जो कामयाब व्यक्ति होते हैं और जो नाकामयाब व्यक्ति होते हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है कि इनके मन, जो कामयाब व्यक्ति होते हैं, उनका मन बहुत शांत रहता है।
बिल्कुल,
उनकी स्टेबिलिटी रहती है।
बिल्कुल,
कोई भी सिचुएशन में वो अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं।
बिल्कुल।
तो क्या मेडिटेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजयोगा की, क्या ये स्टेबल रहने में भी हेल्प करता है?
मेडिटेशन है ही उसके लिए।
अच्छा,
मेडिटेशन के माध्यम से ही, मेडिटेशन माना हम भीतर की क्वालिटीज को जागृत करें।
ओके।
क्योंकि जब व्यक्ति साइलेंस में होता है, तो साइलेंस इज द बेस्ट, जिसको कहा जाए कि भीतर ले जाने के लिए, यात्रा करने के लिए एक बहुत सुंदर साधन है।
ओके।
है ना? और इसलिए व्यक्ति जब मन को शांत करता है, जैसे एकांत में हम बैठते हैं, मन को शांत करते हैं, तो जो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज है, जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको हम जागृत करते हैं।
करेक्ट।
क्योंकि उसी समय वो जागृत होती है। अगर हम हड़बड़ी में हैं, हमारे अंदर अधीर्य है, अधीर्यता है, तो अधीर्यता में व्यक्ति एक तो मन को शांत नहीं कर सकता है, और शांत नहीं कर सकता है तो अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर नहीं ला सकता है। और जब अंदर की ऊर्जा बाहर नहीं आएंगी, तो नेचुरल है चैलेंजेस, चुनौतियां हर एक के सामने वही है।
करेक्ट।
लेकिन जब एक अंदर की ऊर्जा से उसको संबोधित करता है, उसको पार करता है, तो उसकी क्षमता, योग्यता उस अनुसार कार्य करती है। और जब अधीर्यता में आकर के उस चुनौती को संबोधित करते हैं या उसको पार करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां व्यक्ति के जीवन में एक फेलियर, कहीं ना कहीं उसको जैसे एक पीछे हटने वाली स्थिति या आंतरिक स्ट्रेस, इतना तनाव क्रिएट हो जाएगा कि उसके बाद उसको ये लगेगा अरे ये क्या। तो चुनौती हर एक के सामने है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलने का कारण बन जाती है, आधार बन जाती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है कि जब व्यक्ति चुनौती के वक्त एक आंतरिक संतुलन में है, स्टेबिलिटी में है, उस वक्त उसके सामने जो बातें आती है तो उसको अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हैंडल करने का प्रयत्न करता है, और जब उसी से तो उसमें उसके उसका मन शांत है तो उस शांति के कारण
जी
उसका फोकस क्लियर है, फोकस क्लियर होने कारण उसका डिसीशंस जो होगा एक्यूरेट होगा
जी,
और उसके लिए वो अवसर के द्वार खोलती है। लेकिन किसको ये पछाड़ने वाला अनुभव कराता है, तो चुनौती के वक्त जो अधीर्य हो जाते हैं, इम्पेशंस, इम्पल्सिव, एकदम सेंसिटिव, स्ट्रेस्ड, और जब इस स्थिति में आकर के उस चुनौती को एड्रेस करने का प्रयत्न करते हैं तो उसको एक सेटबैक मिलता है, वो अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं और फेलियर महसूस करता है, वो आगे बढ़ जाता है और ये पीछे हटने वाला, पछाड़ने वाला स्थिति का अनुभव करता है।
दीदी एक और चीज, हम पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं उससे डर कर या फिर कई बार उससे बिना सीखे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसे में ये मेडिटेशन क्या हमें पास्ट को भूलने में भी मदद करेगा?
बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन करने से जब हम, जैसे एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, एक जैसे शरीर के लिए क्लेंजिंग जब करते हैं तो डिटॉक्स करते हैं,
करेक्ट,
बॉडी को, यहाँ हम मेडिटेशन के अंदर माइंड का क्लेंजिंग करते हैं। यानी दूसरे शब्द में कहें तो जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स है, माइंड में जो टॉक्सिन्स है नेगेटिविटी के, उसको डिटॉक्स करते हैं,
करेक्ट,
और अच्छे संकल्प देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। सकारात्मक संकल्प देने के साथ साथ हम एक ऐसी ऊर्जा अपने अंदर से क्रिएट करते हैं जो वो क्लेंजिंग का काम करती है।
ओके,
कई बार ये देखा गया है कि खाली पॉजिटिव थॉट्स इनफ नहीं है, क्योंकि थॉट्स सुपरफिशियल है, कई चीजें हमारे संस्कारों से कार्यान्वित हो रही है, यानी हमारे डीप रूटेड जो संस्कार्स है, कई जन्मों के हैं या इस जन्म के भी संस्कार्स है, वो एक्चुअली बहुत स्टिम्युलेटिंग या ट्रिगर्स जिसको कहें वो बन जाते हैं, और इसीलिए मनुष्य कितना भी पॉजिटिव थॉट्स को अपनाने का प्रयत्न करते, माना आज मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ लिया, मैं बहुत अच्छे विचार कर रही हूँ कि भाई हाँ मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, हर एक के अंदर वैल्यूज को देखना चाहिए, हर एक के अंदर जो अच्छाई का कोना है उसको देखना चाहिए
जी।
और ये थॉट को लेकर के मैं दिन आरंभ भी करती हूँ, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आई
वो चीज निकल जाती है,
तो क्या होता है,
बिल्कुल
वो जो पॉजिटिव थॉट मैंने लिया इतना सुपरफिशियल लेवल पर था, ऊपरी स्तर पर ही था, जो वो साइड हो जाता है और वो जो अंदर के संस्कार है वो रिएक्ट करने लगते हैं,
करेक्ट।
तो इसीलिए खाली परिवर्तन विचारों से नहीं लाना है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया कहीं डीप लेवल से हमें शुरू करनी होगी कि मैं अपने संस्कारों को रियलाइज करूं कि मेरे अंदर कौन से ऐसे कमजोरी के संस्कार है और वो संस्कार किस तरह से साइलेंट ट्रिगर्स बन रहे हैं,
करेक्ट,
और साइलेंट एक्शन में ले आता है व्यक्ति को और वो रियलाइज भी नहीं कर पाता है। फिर उसको महसूस होता है अरे मैंने दिन तो इतने अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ शुरू किया था, फिर क्या हुआ, है ना? उसका कारण ये था कि वो विचार इतना सुपरफिशियल लेवल तक था, इसीलिए तो दुनिया में इसीलिए आज पॉजिटिव थिंकिंग की बातें बहुत होती हैं।
कितने बुक्स बन गए हैं,
बुक्स बन गए।
मैं बात करूं किसी के भी फैमिली के जो लाइब्रेरीज होती हैं भरे पड़े हैं आज इंस्पिरेशनल बुक्स से।
हाँ।
लेकिन उतने ही ज्यादा वो दुखी भी हैं।
दुखी है, उसका कारण है मेडिटेशन नहीं है।
ओके।
मेडिटेशन क्या करता है कि उस थॉट को डीप लेवल तक ले जाता है और हमारे जो संस्कारों के लेवल पर उसको ले आता है। तो जो क्लींजिंग है वहां से करना है, तो संस्कार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो खाली थॉट लेकर के, जैसे आजकल हर एक व्हाट्सएप पर थॉट पे थॉट फॉर द डे, टुडेज इंस्पिरेशन रोज भेजते रहते हैं लोगों को, पढ़ते भी है, ऐसे नहीं मैं कहती हूं कि लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी है, और पढ़ने के बाद भूल गए। क्यों? क्योंकि इतना सुपरफिशियल लेवल पर था।
करेक्ट।
लेकिन मेडिटेशन से क्या होता है कि मेडिटेशन माना हम जब कोई थॉट लेते हैं, कोई विचार अपने मन को देते हैं, तो खाली वो विचार नहीं है, उस विचार को एक स्वमान के रूप में लेते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में उसको लेते हैं। और जब अपने आप को उस सेल्फ रिस्पेक्ट में हम स्टेबिलाइज करते हैं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, दिस इज माय ओरिजिनल नेचर, ये मेरी वास्तविकता है, और उस पीसफुलनेस में हम स्टेबिलाइज करते हैं और उसको इतना डीप रियलाइजेशन तक, मेडिटेशन माना रियलाइजेशन तक ले जाते हैं
जी।
इसलिए मेडिटेशन की चार अवस्था हम बताते हैं कि सबसे पहले है इनिशिएशन, कि जहां हम माइंड को इनिशिएट करते हैं उस थॉट से, इनिशिएट करने के बाद फिर दूसरा है कॉन्टेम्पलेशन, फिर उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं माना चिंतन करते हैं
जी।
तीसरी स्टेज है फिर उस पर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कि जिसमें हम अपने आप को उस स्थिति में स्टेबिलाइज करते हैं ये महसूस करते हुए कि दिस इज माय ओरिजिनल आइडेंटिटी, यही मेरी वास्तविकता है, और उस पर जब फोकस करने के बाद चौथी स्टेज है रियलाइजेशन। तो जब उस रियलाइजेशन में जाते हैं तब हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहां पर खाली परिवर्तन विचार तक नहीं, या विचारों में खाली परिवर्तन नहीं लाना है, लेकिन जो परिवर्तन लाना है तो मेडिटेशन की सहायता से ही हम उस डीप लेवल तक जाते हैं और वहां से उस परिवर्तन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। रियलाइजेशन के बाद फिर आप देखो कि जब आप उस कार्य क्षेत्र पर जाओ, सिचुएशन आई, तो इमीडिएट जो इंपल्सिव होकर के व्यक्ति सेंसिटिव होकर के रिएक्ट करता है वो नहीं करेगा, क्योंकि एक रियलाइजेशन से उसने अपने आप को उस स्टेज में स्टेबिलाइज किया है। तो अगर आ भी गई सिचुएशन तो वो भीतर से कहेगा ओम शांति, आई एम अ पीसफुल बीइंग, और फिर पीसफुल स्टेज में वो उस चीज को हैंडल करता है।
दिस इज सो ब्यूटीफुल दीदी, पर एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है जब आप ये बता रहे थे कि एक होती है रियलाइजेशन और एक होती है विजुअलाइजेशन। जैसे आपने कहा कि सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, वो जो स्टेप है, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उस वक्त मुझे विजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि मैं एक सोल हूँ, क्योंकि यही फर्स्ट लेवल होता है जहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर मैं सिर्फ विजुअलाइज करूँगी तो वो सुपरफिशियल लेवल पे ही रह जाएगा।
इसीलिए वहाँ तो खाली इनिशिएट किया, माना उस थॉट में इनिशिएट किया।
ओके।
उसके बाद जब कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो सोचते हैं, हम एक विचार की सीरीज चलाना शुरू करते हैं, पीसफुल है तो उस शीतलता को, उस धैर्यता को, उस शांति को, उस प्रकंपन को, उस ऊर्जा को, जैसे कि हम सोचते हुए उसको जैसे क्रिएट करते हैं, जी। वो ऊर्जा हमारी क्रिएट। लेकिन जब तीसरी स्टेज कॉन्सेंट्रेशन फोकस, उस समय विजुअलाइज करते अपने उस स्वरूप को
जी,
कि कैसे मैं पीसफुल बीइंग हूं, वो विजुअलाइजेशन के साथ हम सोचते हैं और तब हम अपने संस्कार जो अधीरता के हैं या जो नेगेटिव है उसको धीरे 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 वहां तक ले जाते हैं। और फिर जब ये रियलाइजेशन होता है तो विजुअलाइजेशन थिंकिंग वो दोनों जब मैच करने लगते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम देखते हैं,
ओके,
वही हम देखते हैं अपने स्वरूप में, तब रियलाइजेशन होता है। उसके साथ साथ उस भावनाओं को जोड़ते हैं, तो खाली सोचना नहीं है, खाली विजुअलाइज नहीं करना है, तीसरा रियलाइजेशन के लिए उसको फील करना है, उस शांति को फील करो, तब जाके ये रियलाइजेशन होता है ना
जी दीदी।
इसलिए ये तीनों प्रक्रिया, पहले में खाली थॉट, दूसरे में उससे संबंधित सारे थॉट्स, तीसरे में थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन दोनों, और चौथे में थॉट्स विजुअलाइजेशंस एंड फीलिंग्स।
ओके दीदी, आज बहुत ही खूबसूरत तरह से आपने राजयोगा को डिफाइन किया। मैंने ये बहुत मुझे खूबसूरत लगी ये बात कि किस तरह से हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें रियलाइजेशन तक आने की ज़रूरत है। और ये जो फोर स्टेप्स है इसको हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे।
डेफिनेटली।
आगे के एपिसोड में दीदी हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमें इस राजयोगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे।
बिल्कुल।
थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? राजयोगा मेडिटेशन, जिसे आज तक हम मानते आए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, शायद हमारे लिए बना नहीं है, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से दूर भागते आए हैं, आज हमने ये जाना कि राजयोगा मेडिटेशन बहुत ही सरल ज्ञान है। ये कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं और उसके फायदे इतने ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किस तरह से इस राजयोगा मेडिटेशन को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, किस तरह से इसे प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह धारण करें, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।